ओम शांति। सभी योग का आनंद अच्छा ले रहे हैं। चंद्रिका बहन, चेहरे भी चमक रहे और टीका भी चमक रहा है। योग के आनंद का आधार होता है एकाग्रता। जितनी जिसकी अच्छी एकाग्रता, योग के विभिन्न अनुभव सहज ही हो जाते हैं। योग हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी डेफिनेशन बाबा ने एक लाइन में भी दी है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। लेकिन ये संसार की सबसे गुह्यतम विद्या भी है, जिसको हम सबको भी अंत तक सीखना होता है। और ये सत्य है कि इसकी सूक्ष्मता को हम अपने अनुभवों से ही जान सकते हैं। बिना अनुभवों के योग की गहराइयां भी समझ में नहीं आती। वो बुद्धि बल से, केवल ज्ञान के आधार से नहीं जाना जा सकता है। योग से ही सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। योग बल से बढ़कर योग बल के आगे कोई समस्या ठहरेगी नहीं। याद होगा सबको, दादी के समय जब भी कोई बात आ जाए योग करा देती थी दादी, जहां तहां देखा गया ये, और वो बात बहुत जल्दी समाप्त हो जाती थी। हमारा भी यज्ञ से बहुत प्यार है, सबके मन में डेडिकेशन की भावना है। तो यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए हम ये बहुत अच्छी साधना किया करें। और मैं आप सभी को एक छोटी सी राय देता हूँ, सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 7 बार करके संकल्प कर दें, हमारा ये महान यज्ञ निर्विघ्न हो जाए। बहुत ताकत है हमारे संकल्पों में। हम सबके एक साथ यदि ये संकल्प हों, ये महान यज्ञ निर्विघ्न, तो इसके बहुत सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और एक टाइम कोई भी 15 मिनट इसी स्वमान के साथ योग अभ्यास सबको ये करना चाहिए, ताकि यज्ञ के को निर्विघ्न बनाने में हमारा ये बहुत बड़ा योगदान, ये छोटा नहीं होगा, अच्छा योगदान ये होगा। सब इसको देते रहेंगे। अब हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, कौन बन सकते हैं सफल योगी। सबको अपने में चिंतन भी करना है, क्योंकि यही हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। मैं 2 बातें आपको याद दिलाऊंगा साकार मुरलियों की। जो बच्चे मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं, वो मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। बाबा की मुरलियों में ये भी आता रहा है, जो योगी हैं वही मेरे सहयोगी हैं। योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस, जिनका प्रकाश चारों ओर फैलता रहता है, जग का अंधकार जिससे दूर होता रहता है, विकारों की मलिनता जिससे मिटती रहती है। हम याद रखेंगे, जितना अच्छा हम योग करते रहेंगे, हम बाबा के कार्य में सहयोग देंगे। साकार में बाबा लास्ट ईयर में, जब बाबा अपनी योग की चरम स्थिति पर थे, तब ये एक महावाक्य बोलते थे रात्रि क्लास में, कभी कभी सवेरे भी आया है और वो महावाक्य हमने कुछ दिन पहले सुना भी। वो ये है, तुम आत्माओं ने दो युग देवताओं के साथ रहकर देखा, पिछले दो युग मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब भगवान के साथ रहकर देखो। मैं इसको बहुत याद करता था, योग में हमें उड़ाने के लिए ये बहुत सुंदर लाइनें हैं। अब जरा भगवान के साथ रहकर देखें, कितना आनंद है उसमें, कितना सुख है, और वो इतना सुख है कि स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर है। तो पहली चीज, योगी वही बन सकते हैं जिनके मन में इस तरह के सुंदर विचार रहते हों। हमारे ये श्रेष्ठ संकल्प हमें व्यर्थ और साधारण संकल्पों से भी मुक्त रखते हैं, और हर श्रेष्ठ संकल्प से प्योर एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती रहती है, क्योंकि एकाग्रता में हमारे ब्रेन का एनर्जेटिक होना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जानने की, न केवल मन बुद्धि लेकिन ब्रेन भी बहुत एनर्जेटिक होगा तो एकाग्रता सहज हो जाएगी और हमारा हरेक सुंदर विचार, स्वमान के विचार ब्रेन को एनर्जी देते रहते हैं। तो हम अपने पास बाबा की मुरलियों से सभी को ये होमवर्क करते रहना है, कम से कम 50-60 सुंदर पॉइंट लिख कर रखें अलग डायरी में, अपनी एक पर्सनल डायरी बनाएं, जिसमें ऐसी सुंदर बातें जो हमें उड़ाती हैं, जो हमें निश्चिंत कर दें, जो हमें नशा चढ़ा दें, जो हमें जगा दें, हमें क्या करना है उसकी हमें याद दिला दें, ऐसी बातें लिखें सभी। मैं ऐसी बातें लिख कर रखता हूँ, उन्हें पढ़ता रहता हूँ, बहुत सुंदर चीजें हैं वो, जगाती हैं हमें। नहीं तो हम विस्मृति की नींद में सो जाते हैं, अपने महान कर्तव्यों को भी भूले रहते हैं, इसलिए जीवन में साधारणता आ जाती है, या केवल कर्म कर्म में जीवन रह जाता है। एक बात, दूसरी चीज, योगी वही बन सकते हैं जो सरल चित्त हो, जिनकी नेचर सॉफ्ट हो। बाबा ने कभी इसी हॉल में, अव्यक्त बाबा ने 5 बातें सुनाई थी सरलता की, तब से ही मुझे इस पे ध्यान गया। मुझे पता भी नहीं था सरलता क्या होती है, पता चला कि सरलता, सहज जीवन, सहज विचार, सॉफ्ट संस्कार, जो सरल चित्त होंगे उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। पहली बात, तब मुझे ये पता नहीं था ये कैसे होगा, वो धीरे धीरे पता चला कि सरल होने से समस्याएं भी सरल। दूसरा, जो सरल चित्त होंगे उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। तीसरा, संस्कार भी सरल हो जाएंगे। चौथी बात व्यवहार से संबंधित थी, उनके संबंध संपर्क भी सरल हो जाएंगे, सब कॉन्टेक्ट सरल, रिलेशनशिप सरल। और पांचवी बात थी, योग सरल हो जाएगा, सहज योग। सहज योग होना बहुत बड़ी प्राप्ति है, नेचुरल हो जाए योग बहुत बड़ी चीज है। तो हम अपनी नेचर को सॉफ्ट बनाए, व्यवहार के लिए भी, संगठन के लिए भी, कार्यों के लिए भी, सॉफ्ट नेचर बहुत सुंदर है। जो सबको प्रिय है। जैसे सॉफ्ट चीज हमें प्रिय लगती है, सॉफ्ट नेचर सबसे ज्यादा प्रिय है, सबको प्रिय। सब ऐसी आत्मा को लाइक करेंगे और वो बाबा के बहुत समीपता का भी अनुभव करेंगी। इस योग को हमें नेचुरल बनाना है, उस बात को जरा यहीं छोड़ें, आगे बढ़ेंगे। फिर बाबा का जो गीत बजा भी, सभी कहते बाबा तो बस मेरा है, ये मेरापन बाबा से बढ़ाना, अपनापन। मैं इसके लिए एक हिस्ट्री होल की छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। अभ्यक्त बाबा आए, माताओं की भट्टी हुई, भट्टी यज्ञ में शुरू हुई थी। पापा साकार बाबा के समय भट्टियां नहीं होती थी। अभ्यक्त हुए बाबा तो बाबा ने पहले कहा था टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू करो, 2 साल एक एक ग्रुप वो चलाए। फिर माताओं की भट्टी हुई, भाइयों की होती थी, कुमारों की हुई। तो माताओं की भट्टी में जब बाबा आए, ओपनिंग और क्लोजिंग बाबा करते थे। बाबा ने माताओं को देखकर कहा, पूछा, तुम सभी बाप को कहती थी कि जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना, मैं आ गया और तुम्हें अपना बना लिया, लेकिन एक चीज वो भी मैंने तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी ही नहीं थी। बाबा बिल्कुल पास पास बैठे होते थे हिस्ट्री हॉल में, तो क्वेश्चन आंसर करने लगे, बताओ क्या दिया जो तुमने मांगा नहीं था। किसी ने कहा ज्ञान दे दिया, मांगा नहीं था, ज्ञान तो हमसे मांगना भी नहीं आता था। ये तो कहते थे सद्बुद्धि दो, पर ज्ञान दो ये तो मांगना भी नहीं आया किसी से। किसी ने कहा प्यार दे दिया, माताओं ने 5-7 बातें कही, बाबा ने जो उत्तर दिया सुनो आप, आपको भी नशा चढ़ेगा। आप जानते हैं इस उत्तर को, लेकिन मुझे तो बहुत नशा चढ़ा था। सामने बैठकर भगवान ने कहा, बिल्कुल यही शब्द थे, मैं भी तुम्हारा हो गया। हम तो पीछे बैठे थे, कानों में ये शब्द पड़े, भगवान बोल रहा है मैं भी तुम्हारा हो गया। ये संकल्प ही हमें मगन कर देता है। उन दिनों हम सबकी ड्यूटी 2-2 घंटे रात को पहरा देने की भी होती थी, तो 11 से 1 मेरी ड्यूटी भी थी। मेरे को ये संकल्प मगन कर गया। मैं सोचता रहा, जिसे आज तक हम भगवान कहते रहे वो सामने बैठ कर कह रहा है मैं तुम्हारा हो गया। जो सर्वशक्तिवान है वो हमारा हो गया, जो भाग्य विधाता है वो हमारा हो गया। तो मुझे रामायण की बात याद आई, सुग्रीव और राम की जब मित्रता हुई तो राम ने सुग्रीव को कहा कि हे राजन, आज से हम तुम्हारे हो गए, तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया। ये शब्द है रामायण के, बाबा भी हमारा हो गया। इस अपनेपन को फील करेंगे। फिर आगे मुरलियों में आया, बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। सब इस पे चिंतन करेंगे आज। जो अपना होता है उससे बहुत प्यार होता है और उस पर अधिकार होता है। मैं सोचता था ये सुनते ही कि भगवान खुद हमें सिखा रहा है मुझे कैसे बांधो। शास्त्रों में दिखाया ना, श्री कृष्ण को गोपियां नहीं बांध पाती थी, बांधा श्री कृष्ण को और बाहर निकल के जब अंदर गई तो देखा उसके पति को ही बांध दिया है। यशोदा बांधने लगी, रस्सी टूटती गई, नहीं बांध पाई। कहा ऐसे मैं थोड़ा ही बनता हूँ, प्यार से बांध दो, बंध जाऊंगा। प्यार की रस्सियों में उसको बांधा जाता है। अधिकार पे चिंतन करना, भगवान पर हमारा अधिकार, सोच के देखो कितनी बड़ी चीज है। भगवान पर हमारा अधिकार, अधिकार से उसे कह सकते हैं कुछ मदद के लिए। वो हमारा सुप्रीम सर्जन भी है, हम उसे यूज कर सकते हैं इस तरह कुछ बीमारी आ जाए देह में, जिसका बाप ही सुप्रीम सर्जन हो। बाबा से बात करो, तुम हमारे बाप सुप्रीम सर्जन और हम तुम्हारे बच्चे बीमार, दर्द हो रहा है, रात को कभी हो जाए, डॉक्टर ना हो, समस्या हो जाए, सुप्रीम सर्जन के रूप में याद करेंगे, तुरंत मदद पहुंचेगी। ये बहुतों के अनुभव हो चुके हैं, तुरंत मदद का आभास होगा। दर्द जैसे हर लिया बाबा ने, बड़ी बीमारी ठीक कर दी। तो अधिकार, प्यार, अपनापन, नेचुरल योग, जिसमें हमें योग लगाना नहीं है, बैठना नहीं है, ये रिलेशनशिप है, ये अपनेपन की फीलिंग है। फिर वहीं आ जाएं, योगी वही बन सकते हैं जिन्होंने अपने चित्त को शांत कर लिया हो। विचार करें आज इस पर आप, क्या भगवान को पाकर, इतना महान ज्ञान पाकर हमने अपने चित्त को शांत किया है, या उसमें अभी भी उलझन, उत्तेजना, बदले की भावना, कहीं क्रोध भरा हुआ तो नहीं है? क्या हमने अपने चित्त को शांत और निर्मल किया है? और ये अपने हाथ में है। जो स्लोगन मैंने अपने पास रखा है वही आप भी सुन लें, अच्छा लगे तो रख लेना। बुद्धिमान वही है जो अपने चित्त को शांत रख सके हर परिस्थिति में। आज की मुरली सबको याद होगी, अभी तो ताजी ताजी। परिस्थितियां मनोरंजन, कितनी बड़ी स्थिति है। जैसे विनाश, मनोरंजन होगा नहीं, मनोरंजन बनाना पड़ेगा। परिस्थितियां मनोरंजन, हम चित्त को शांत करना सीख गए हैं। आज की मुरली में बहुतों के प्रश्नों के उत्तर थे। चित्त को शांत करेंगे ज्ञान के बल से। क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, अगर इस उलझन में हमारा मन रहेगा तो क्या नुकसान होगा? हम संगम युग को सफल नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारा चित्त शांत नहीं होता, दूसरे भी शांत नहीं होंगे। ये कर्म गति है, क्योंकि सभी हिसाब किताब चुकतू करने के लिए भी आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। मैं सोचा करता हूँ आप इस बात को जानते हैं, दो लोग एक कमरे में रहे, तीन लोग एक कमरे में रहे, वही क्यों रहे? लड़ाई भी हो रही है, फिर भी रहना पड़ रहा है। कर्मों का हिसाब किताब है। यहाँ चित्त को शांत करना परम आवश्यक है। मैं एक छोटी सी अपनी कहानी सुनाऊं। हम यहाँ लाइट हाउस में रहते थे, पांडव भवन में, तो बरांडा जो पैसेज है ना आगे, वो खुला होता था। ये खिड़कियां लगी बाद में, तो जैसे फागी आती है, हवा चलती है, फॉग बहुत रहती थी, बारिश बहुत होती थी, हवा तेज चलती थी, हमारे बिस्तर भी गीले रहते थे। एक व्यक्ति कमरे से निकला, दरवाजा खोल के चला गया। मेरी भी आंख खुली, अब मैं सोचता था अब मैं संकल्प चलाऊं, इसको कुछ कहूं वो अच्छा, या उठ के एक सेकंड में दरवाजा बंद करके सो जाऊं। तो मैंने दूसरी विधि अपनाई। ये काम रोज होता था। एक को तो नेचर ही थी, उसको बाथरूम भी जाना, 5 मिनट भी बाहर जाना, हवा भले ही कितनी भी चल रही हो, ठंड कितनी भी हो, दरवाजा खोल के जाएगा। दूसरे लोग उसे बोलते थे, मैं सोचा बोलना, खुद संकल्प चलाना, 15 मिनट उसमें सोऊं ही नहीं, इससे तो अच्छा ना एक सेकंड उठ के बंद कर दूं, बस खत्म, सो जाओ। फिर अपने चित्त को शांत करना अपने हाथ में। योगी वही बन सकते हैं जो संतुष्ट होकर रहें। आज की मुरली में भी थोड़ा थोड़ा था, और ये हमारी मुख्य धारणा है। संतुष्ट आत्माएं इस संसार के लिए प्रकाश हैं। संतुष्ट मणि से चार ओर प्रकाश फैलता है, बाबा के महावाक्य हैं ये। संतुष्टता संपूर्णता की पहचान है। हम संपूर्ण संतुष्ट हो जाएं, संतुष्ट होकर रहें। कुछ मिल रहा है तो भी संतुष्ट, एक्सपेक्टेशंस के अनुकूल नहीं मिल रहा तो भी संतुष्ट। और ये बात हमें पक्की करनी पड़ेगी, इस संसार में वही नहीं होगा जो हम चाहते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही सब कुछ नहीं होगा, उसके विरुद्ध भी होता रहेगा। हमें उन चीजों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वीकार करना, इसको अपनी नेचर बनाएं। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार करके चित्त को शांत करें। सभी इस पर बहुत अच्छा काम करेंगे। अपने जीवन को देखकर हमें अपने चित्त को शांत करना है। परिस्थितियों के बदलने की इंतजार नहीं, परिस्थिति कैसी भी होंगी हमें स्वयं को शांत करना है। मुझे एक बात और याद आ गई चंद्रिका बहन को देख के। हमारा यज्ञ एक समय ऐसे था जब यज्ञ में पैसा बहुत कम होता था, दवाई नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं होता था। पालनपुर जाना, चंद्रिका बहन का घर था वहीं, वहीं हम लोग जाया करते थे जब किसी को जाना है। पैसा भी नहीं था, कोई बस में बैठ के जाएगा, कोई ट्रेन में जाएगा। जब जाएंगे तब दादी की क्लास भी होगी, उसके बाद बहुत लोग जाने लगे पालनपुर, खर्च बहुत होता है, जाते नहीं थे। फिर मैं ये बात आपको क्यों सुना रहा हूं, जब कुछ नहीं था और किसी को बीमारी होती थी तो उस व्यक्ति को कोई संकल्प ही नहीं चलता था। और अब जब हॉस्पिटल है और बुखार हो गया, संकल्प चलेगा। देखा ट्रांसपोर्ट वाले ने गाड़ी नहीं दी, वहां गए तो उसने बालू भाई ने दवाई नहीं दी हमें, बुखार में हमें यहीं आना पड़ा। देखा किसी ने हमें पूछा ही नहीं, और हम ऐसे समय से गुजरे जहां कोई पूछने वाला ही नहीं होता था। दवाई भी खानी है क्या, कुछ चाहिए भी क्या, तो था ही नहीं प्रश्न। बोली दादी कुछ बना के देती थी किचन से काढ़ा, वो सभी बीमारियों की दवाई होती थी। और आप में से शायद किसी को पता हो, उससे भी पहले अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतन से फॉर्मूला भेजा करते थे बीमारियों की दवाई का। पता है किसी को, फॉर्मूला आता था, मेरे लिए भी आया था। मुझे बुखार रहता था 69 में, दवाई तो थी नहीं। 7 दिन हो गए, दिन में किचन में आ जाते थे, गर्मी लग के बुखार उतर जाता था, रात को फिर हो जाता था, सवेरे फिर किचन में बुखार ठीक। 7 दिन जब हो गए तो संतरी दादी ध्यान में गई, आपे बाबा के रूम में बैठती थी वो 3 बजे से। बाबा ने मुझे दिखाया और कहा बच्चे को बुखार रहता है, इसको 7 दिन देसी घी का हलवा खिला दो, बुखार की दवाई। डॉक्टर देखो कितनी अच्छी बुखार की दवाई है, किसी डॉक्टर के पास है ऐसी दवाई? और मुझे याद है मैं पहले ही दिन खाया और मैं ठीक हो गया, 7 दिन तो मैं शायद खाया भी नहीं था। बाबा फॉर्मूला भेजते थे ऊपर से, बिल्कुल नाम, काली मिर्च, सौंप, तुलसी के पत्ते, ये डाल के बॉयल करके पिला दो इसे। तो जैसे जैसे चलो गीत बज गया मोबाइल का, 12 तो बज गए, अच्छा बजेगा अभी। तो जब मनुष्य के पास साधन बहुत आते हैं, साधन उसके मन को बहुत विचलित करते हैं। अब अगर किसी को पालनपुर बस से जाना पड़े, चंद्रिका बहन को पता हो कितनी मुसीबत पैदा कर देगा। बस चाहे भले ही उसे 500 रुपए दे दो, किलो 500 ले जाओ, बस से जाके पालनपुर से हमको बस से आ जाना। साधनों ने मन को बहुत विचलित कर दिया होता है, और जो समय पहले था उस समय को हमें फिर सामना करना होगा कि अपनी बीमारियों को योग बल से ठीक करो, असली दवाई। जब ये पता चलेगा कि दवाई तो है, डॉक्टर भी हैं, इंजेक्शन भी, लेकिन इलाज नहीं हो रहा, तो योगी वही बन सकते हैं जो हर परिस्थिति में चित्त को शांत रखें। योगी वही बन सकते हैं जो साक्षी भाव धारण करते चलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन सबसे इम्पोर्टेंट साक्षी भाव। और इसमें बाबा की एक बात पर सभी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छी तरह। बाबा ने कहा था, जैसे मैं वतन में बैठकर इस खेल को साक्षी होके देखता हूँ, वैसे ही तुम भी देखो। हम अपने यज्ञ के बारे में सोचें। 2 साल पहले शांतिवन में कोई एक बड़ी बात हुई थी, बाबा आए उसके बाद, सबको टेंशन था, बाबा आए उसके बाद, बाबा की मुरली चली, याद होगी वो मुरली आपको, बेफिकर बादशाह बन जाओ, टेंशन फ्री, नो टेंशन, मेरे को तेरे में बदल कर, फिकर बाप को देखकर फकुर ले लो, बेफिकर बादशाह बन जाओ। मैं सोचता था नीचे सब हलचल में और प्रभु जी साक्षी, मालिक साक्षी और निमित्त वाले परेशान। मैं अपने को ऐसे ही ट्रेंड किया है, हम तो निमित्त है ना, मालिक की स्थिति देखो कैसे वो साक्षी है। और क्यों है सोचना ये है, क्यों है वो साक्षी? क्योंकि वो ये जानता है जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। ये पॉइंट सबको खूब प्रैक्टिस में लानी है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, कर्म के अनुसार हो रहा है, बिना कर्म के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और बाबा के इसमें अगले शब्द हैं, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। चिंतन भी करेंगे इस पर, बहुत बुरी बुरी चीज होती हैं, क्या हम सोच सकते हैं यही होना चाहिए? हर बात को हम अगर एनालाइज करेंगे, उसके पीछे के रहस्य को जान लें, किस कर्म के कारण ये फल हो रहा है, तो पता चलेगा यही होना चाहिए। किसी ने जहर ही पी लिया हो तो जहर तो चढ़ेगा ना शरीर को। एक पॉइंट जिसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, इसे चित्त शांत होगा। विनाश काल में हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकेंगे कि जो हो रहा है यही सत्य है। वो सब कुछ होगा जिसे हम देखना नहीं चाहते। दूसरों के लिए जो कुछ होगा उसे तो हम ड्रामा फट से कह देंगे, लेकिन हमारे साथ और हमारे अपने लोगों के साथ भी बहुत होगा। सबको हिसाब किताब चुकतू करने होंगे और हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय इसके कि साक्षी होके देखें और उन्हें सकास दें, मदद करें बस। दूसरी पॉइंट है जो ऐसे ही बहुत मदद करेगी, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। आ जाओ आगे, आ जाओ बहने, कुर्सी भी है आगे भी है। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं इसलिए यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। दोष तो दिखता है ना, इसने मेरे से ये किया, इसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया, ये न होते तो हम कहाँ पहुंच जाते। अनेक बातें हैं संगठनों में, परंतु सबका अपना अपना पार्ट है, इस पे भी सबको कार्य करना है। ऐसा करने से चित्त शांत होगा, हम बहुत अच्छे योग के अनुभव करेंगे। और इसी में लास्ट बात, जो स्वमानधारी होंगे वो सफल योगी हो जाएंगे। सरल योगी तो होंगे ही, सफल स्वमानधारी, क्योंकि स्वमान श्रेष्ठ आत्माभिमान है। आत्माभिमानी की हाईएस्ट स्थिति है स्वमान। इसको रियलाइज करते चलें, बहुत अच्छी तरह फील करें, स्वीकार करें। मैं एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको बताना चाहूंगा और हम उसको प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ, बहुत अच्छी विधि। उसे पहले एक छोटा सा अनुभव स्वमान का सुनाता हूँ, आप में से जो भी चाहे ये होमवर्क कर लेना। जब यहाँ शुरू में विदेशी बहुत आते थे तब की बात है, अभी विदेशियों की संख्या बढ़ी नहीं थी तो बहुत समस्याएं लेकर आते थे लोग। तो अहमदाबाद का एक कुमार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट था वो मेरे पास आया कि मुझे आपसे एक घंटा चाहिए, मेरी समस्याएं बहुत हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मैं समझता हूं क्या क्या लोगों की समस्याएं होती हैं। मैंने उसे कहा कि एक घंटा हम कल बैठेंगे, आप एक छोटा सा काम करके आओ, स्वमान की 50 पॉइंट लिखना। और कैसे लिखना, पहली पॉइंट का मैंने उदाहरण दिया, मैं एक महान आत्मा हूं, लिख दिया कागज पर। अब इसको तीन बार अपने चिंतन में लाना है। पहली बार, ये सच है कि मैं एक महान आत्मा हूं। फिर दूसरी बार, भगवान ने कहा है तुम महान आत्मा हो, मैं महान हूं। फिर तीसरी बार, मैं महान हूं तो मुझे कैसा होना चाहिए, मेरे बोल, मेरे विचार, मेरा व्यवहार, ऐसे लिख के आना। वो बाबा कमरे में बैठा, उन दिनों भीड़ होती नहीं थी। लिखे उसने 50 और अगले दिन मेरे पास आया। मुझे पता था कि अब उसको टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा मैं फ्री हूं आपके लिए एक घंटा, बोलो क्या समस्याएं हैं। तो उसका उत्तर था अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्वमान की बातें लिखने से ये समझ में आ गया मैं कौन हूं, मैं कितना महान और ये बातें कितनी छोटी, जिनको मैंने समस्या मान लिया है वो तो कुछ है ही नहीं, उनमें तो दम ही नहीं है, उनकी तो वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू तो मेरी स्थिति की है। मैं मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, इन शक्तियों के समक्ष ये छोटी बातें कुछ भी नहीं है। स्वमान बहुत बड़ी चीज है, जादुई शक्ति है इसमें। जिस स्वमान का हम अभ्यास करते हैं वैसी एनर्जी हमारे ब्रेन को जाती है और चारों ओर वातावरण में वैसे ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। और एक बात सुंदर आपको सुना दूं इसी में, जिसने जिस स्वमान का अच्छा अभ्यास किया होगा उसके द्वारा न केवल वही अनुभूतियां होंगी लोगों को, लेकिन वैसे ही साक्षात्कार भी होंगे। मान लो एक बहन ने बहुत अभ्यास कर लिया, मैं पूज्य इष्ट देवी हूँ, मैं अस्तभुजाधारी देवी हूँ, इस स्वमान का अभ्यास कर लिया, तो क्या होगा? वो यहाँ से ओम शांति भवनी जा रही होगी ना, रास्ते में बहुत लोग ओम शांति भवन देखने आए, किसी किसी को दिखाई देगा, अरे ये तो दुर्गा देवी यहाँ से गुजर रही है। फिर देखेंगे ना ये तो कोई सफेद कपड़े वाली बहन है, फिर दिखाई देगा ना ये तो अस्तभुजाधारी है। संगम युग का अति सुंदर समय अभी बाकी है, पता है ना कौन सा? अभी बाबा ने चाबी अपनी जरा बंद करके रखी अलमारी में, कौन सी चाबी? दिव्य दृष्टि की, साक्षात्कार की, धूम मचने वाली है इस सृष्टि पर। बाबा के बच्चों के अलावा किसी का नाम नहीं रह जाएगा टीवी चैनल्स में, और कोई चीज नहीं रह जाएगी, केवल बाबा, उसका ज्ञान, उसके महान बच्चे। बहुत सुंदर समय आ रहा है, इसलिए वो सुंदर समय उनके लिए सुंदर होगा जिनकी स्थिति सुंदर होगी। इसलिए भट्टी में चिंतन कर लें, एक होमवर्क चिंतन का आपको देता हूँ, लिखना सभी, आज दोपहर शाम कभी भी, कल मेरा अब तक का संगम युग कैसे बीता है, मैंने कैसे बिताया, उलझनों में, खुशियों में, समस्याओं में, या परमानंद में, सफलता को पाते हुए या निराशा में। अच्छी तरह बैठ के नजर डालना फिल्म पर, 10 साल 20 साल 30 साल जितने आपको हो गए, 30 साल की फिल्म बनाना, ऐसे बिताया है मैंने अपना ये अनमोल काल, और अगले 10 साल हम ऐसे बिताएंगे। ऐसे कैसे नहीं, एक प्लानिंग, सुंदर प्लानिंग, ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता रहेगी। क्योंकि बिना लक्ष्य के चलने वाला जीवन कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता मनुष्य। एक सुंदर लक्ष्य जीवन का, 3-3 मास का लक्ष्य, 6-6 मास का लक्ष्य। और एक सीक्रेट आपको सुना दूं, फिर उस प्रैक्टिस पर हम चलेंगे। सीक्रेट ये है, आप अपना 3 मास का लक्ष्य बनाएं, कागज पर लिख दें सवेरे उठते ही, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है मॉर्निंग बिल्कुल उठते ही, मैं 3 मास में ये करूंगी। 3 दिन लिखें बस, तो आपकी ब्रेन की समस्त शक्तियां आपको कोऑपरेट करने लगेंगी उस लक्ष्य को पाने में। ये सिद्धांत है, लौकिक में भी यूज किया जा सकता है, आप सिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, बिजनेस वाले भी, और हम सब ज्ञान योग के मार्ग पर भी इसको। मान लो एक किसी को व्यर्थ संकल्प ही बहुत चलते हैं, और उसने लिख दिया सवेरे 3 मास में मैं व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो जाऊंगा, तो ब्रेन ने उसको, सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया। जब भी व्यर्थ संकल्प चलेगा तो ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड रोक देगा, नो, अवेयरनेस मजबूत हो जाएगी। अब वो प्रैक्टिस है, ये रोज एक बार सबको जरूर करनी है। सूक्ष्म लोक में हम चलेंगे, अब हम उसको करेंगे ही प्रैक्टिस, बस इतना सूक्ष्म लोक में चलेंगे। इसको कोई भारी न समझे, कैसे चलेंगे, फरिश्ता बनकर चलें, कैसे चलें, कुछ नहीं सोचेंगे। जैसे मैं आपको कहूं, यहां बैठे हैं हम सब, कि चलो बाबा के कमरे में जाकर बैठो, एक सेकंड लगेगा ना, बस बाबा का कमरा सामने, चित्र सामने बाबा का, मैं वहां बैठा हूं। ऐसे ही ऊपर हैं, सूक्ष्म लोक का नजारा क्लियर देखेंगे, विजन क्लियर, सफेद प्रकाश, फरिश्तों की दुनिया, सामने से बाप दादा आ रहे हैं। बाप दादा का स्वरूप बहुत सुंदर डिवाइन देखें, जिसके अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं, मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। आगे की प्रैक्टिस, अब हम प्रैक्टिस करेंगे रेड लाइट। बिल्कुल मग्न होकर करेंगे, चलें आकाश के पार। यहां चारों ओर श्वेत प्रकाश, परम आनंद, सामने दूर बाप दादा, अंग अंग से गोल्डन किरणें फैल रही हैं और मस्तक में महाज्योति चमक रही है। मेरी ओर आ रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, पास आ गए और अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। और बोले, बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। मस्तक पर तिलक लगाया, और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव। निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। और बोले, तुम साधारण नहीं हो, इस सृष्टि की महान आत्मा हो। अब एक एक स्वमान को स्वीकार करते चलेंगे। मैंने तुम्हें चुना है महान कार्यों के लिए। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। इन शक्तियों पर तुम्हारा अधिकार है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मैंने तुम्हें वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। जहां भी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वहां के सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने अनंत बार इस माया को जीता है। तुम तो विजयमाला के ऐसे मणके हो, जिन्हें स्मरण करने से भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तुम वही हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। तुम विश्व कल्याणकारी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक हो। ये प्रकृति तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की वैसे ही इंतजार करती है जैसे प्यासा मनुष्य पानी का करता है। तुम इस जहान के नूर हो, सृष्टि के श्रृंगार हो, सब धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, अब हम सच्चे दिल से बाबा को शुक्रिया करेंगे। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, हे ज्ञान के सागर, आपने सत्य ज्ञान देकर हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी। हमें तीसरा नेत्र दिया, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, जीवन की यात्रा में हम अकेले थे, आप आकर हमारे साथी बन गए। आपने हमें सहारा दिया, आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए। हे परम सदगुरु, आपने शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना की। आपको पाकर हम बहुत सुखी हुए। आपको कोटि कोटि बार बारंबार शुक्रिया। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेते हम वापिस ओम शांति। ये प्रैक्टिस सभी एक बार कर लिया करें रोज, सुबह शाम कभी भी। अब आधा घंटा आपका योग होगा। मैं एक संकल्प देता हूँ, दो संकल्प। पहले 15 मिनट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परम धाम में सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं, और फिर प्रैक्टिस करेंगे वो फैल रही हैं। संकल्प को रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, परम धाम में पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र किरणें मुझ पर आ रही हैं और चारों ओर फैलकर प्रकृति को पावन कर रही हैं। पहले 15 मिनट दुखी आत्माओं के लिए वाइब्रेशंस, सुख देना उन्हें, और दूसरा प्रकृति के लिए पवित्र वाइब्रेशंस। 15-15 मिनट ये करेंगे। ओम शांति।